श्री उपनिषद का आठवां मंत्र पढ़ रहे हैं। सपर्यचाच शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर यथा तथ्यतो रथान विदिथा चाश्वतिभ्यः समाभ्यः। इसका अनुवाद इस प्रकार है, उस ऐसे सबसे महान पुरुष को सही सही जानना चाहिए जो अदेहधारी सर्वज्ञ अनिध्य शिराओं से विहीन शुद्ध अदूषित आत्मनिर्भर दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हरेक की इच्छा पूर्ति करता आया है। तो पिछले शनिवार को हमने ये देखा था कि जो सबसे ऊंचे भक्त होते हैं भगवान के, जिनको हम महाभागवत कहते हैं या उत्तम अधिकारी कहते हैं, उनकी दृष्टि किस प्रकार से होती है। हमने देखा था कि वो भगवान को हर जगह देखते हैं, हर चीज में भगवान को देखते हैं और हर चीज को भगवान में देखते हैं। ये दोनों चीजें आवश्यक है। हर चीज में वो भगवान को देखते हैं और भगवान को भी, हर चीज को भी भगवान में देखते हैं, दोनों चीज। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कैसे नजर आते हैं या ऐसे महाभागवत किस तरह से भगवान को देखते हैं, ये इस श्लोक में बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस आठवें मंत्र में भगवान के श्री रूप का वर्णन किया गया है। भगवान का भी रूप है, हालांकि कई दार्शनिक ऐसे बताते हैं कि भगवान सिर्फ निराकार हैं, पर जैसे हम कई शनिवार पहले चर्चा कर रहे थे कि भगवान पूर्ण है। पूर्ण होने का मतलब यह है कि ये भौतिक दुनिया में या उनकी सृष्टि में जो कुछ भी है वो उनमें है और जो सृष्टि में नहीं है वो भी उनमें है। तो हम देखते हैं कि हम जैसे साधारण जीवों को भी रूप है, कितने सारी चीजों को रूप है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान का रूप नहीं है। पर भगवान का रूप और हमारा रूप अलग है। किस प्रकार से अलग है वो आज हम इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो हम अक्सर सोचते हैं क्योंकि कि हमारा रूप सीमित है, भौतिक तत्वों से बनाया हुआ है और ये नाशवान है, तो इसलिए हर एक शरीर जो है, हर एक देह, हर एक रूप ऐसे ही होना चाहिए, इसलिए भगवान को रूप नहीं हो सकता। इस प्रकार से लोगों की विचारधारा होती है, जन साधारण लोगों की विचारधारा होती है। पर यहां जो बताया गया, जो शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, ये देखिए, पहले तो बताया गया है कि वो शुक्रम है यानी सबसे शक्तिशाली, अकायम यानी जिनका कोई भौतिक शरीर या भौतिक देह नहीं है, अस्नाविरम जिनके कोई जो शिराएं नहीं है, जैसे साधारण भौतिक शरीर में किस तरह से वेन्स तो नाना प्रकार के खून बहने वाले जो शिराएं होते हैं वो नहीं है। और क्या बताया गया, शुद्धम अपाप विद्धम कवि ही परिभू स्वयंभू, इस तरह से भगवान का वर्णन किया गया है। भगवान तो वैसे हमारे शब्दों के वर्णन से तो परे हैं, पर फिर भी जहां तक हमारी बुद्धि हमें मदद करती है वहां तक तो हमें कोशिश करना चाहिए भगवान को समझने के लिए। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो कहते हैं ईश्वर या नियंत्रण करता तो बहुत है, पर इनमें से परम परम ईश्वर कौन है, कृष्ण, ईश्वर परमः कृष्ण। और ये श्री कृष्ण का वर्णन देखिए कैसे करते हैं ब्रह्मा जी, वो कहते हैं सच्चित आनंद विग्रह। विग्रह का मतलब है उनका रूप है, तो ये कैसा रूप है उनका? ये पंच महाभूतों का बनाया हुआ रूप नहीं है, ये रूप है सत चित आनंद का बनाया गया रूप। सत का मतलब है जो हमेशा के लिए रहता है, चित का मतलब है ज्ञान से पूर्ण, और आनंद का मतलब है आनंद से पूर्ण। तो उनका शरीर है ये बिल्कुल आध्यात्मिक है, ये भौतिक शरीर नहीं है उनका। और भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, अजोपिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। वो कहते हैं कि हालांकि मैं सब प्राणियों का प्रभु हूं, फिर भी जब मैं आता हूं यह भौतिक दुनिया में, संभवामि यानी मैं प्रकट होता हूं, अवतार लेता हूं। कैसे अवतार लेता हूं? आत्ममायया, मेरी अंतरंग शक्ति से मैं अवतार लेता हूं। और प्रकृतिम, जो जैसे मेरा आध्यात्मिक शरीर है वही आध्यात्मिक शरीर में मैं आता हूं। यानी भगवान जिस रूप में आते हैं अवतार में, उनका शरीर उनका देह जो है वो पूरी तौर से आध्यात्मिक होता है, उनके अंदर कोई भौतिक दोष नहीं होता। मुझे याद है कई साल पहले मैं एक भगवद गीता का टीका पढ़ रहा था, एक बहुत फेमस टीका है, और उसमें लिखा गया था जब भगवान कहते हैं कि श्री भगवान वाच। आप देखेंगे कि भगवद गीता में हमेशा श्री कृष्ण जब भी बोलते हैं तो ये बताया जाता है कि श्री भगवान उवाच। कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवान है। तो ऐसे इस तरह से जब भगवान को संबोधित किया गया है, तो ये जो टीकाकार हैं, जो कमेंटेटर हैं, वो बता रहे थे कि वास्तव में ये श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, जो श्री कृष्ण के अंदर जो है, जो निराकार है, वो बोल रहे हैं, वास्तव में श्री कृष्ण नहीं है। तो ये नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण के अंदर में और बाहर में कोई अंतर नहीं है। देखिए, हमारा जो शरीर है वो भौतिक है और हमारी आत्मा है वो आध्यात्मिक है, इसलिए हमारे शरीर में और हमारे आत्मा में अंतर है। जिस प्रकार ये मंदिर में और हम में अंतर है, हम ये मंदिर के अंदर हैं, उसी तरह से ये कपड़े हैं, ये कपड़े हमने पहने हैं, कपड़े में और हम में अंतर है। उसी तरह से श्री कृष्ण बताते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वो कहते हैं कि भौतिक शरीर है ये आत्मा के लिए एक वेश है, पोशाक है। ये आत्मा ये पोशाक को पहन लेती है और फिर मृत्यु के समय उसको त्याग देती है। तो इस तरह से आत्मा में और शरीर में अंतर है, और ये आत्मा और शरीर का अंतर जानना ये ज्ञान की शुरुआत है भगवद गीता के अनुसार। पर भगवान का देह जो है वो इस प्रकार नहीं है, वो पूर्ण आध्यात्मिक देह है। कहने का मतलब है कि उनके आत्मा में और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से हमारे आत्मा में और हमारे शरीर में अंतर है, उस तरह से भगवान के आत्मा और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक ही है। हर भौतिक शरीर जो है उसके छह तरह के परिवर्तन होते हैं। एक तो भौतिक शरीर का जन्म होता है, फिर थोड़े समय के लिए वो बड़ा होता है, उसके बाद में वो अनेक उसके अंग जो है वो विस्तारित रूप में आ जाते हैं, विस्तार हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, अनेक उसके अंश बन जाते हैं। उसके बाद परिपक्वता का स्तर आ जाता है, मैच्योरिटी। उसके बाद धीरे 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 से नाश हो जाता है और अंत में बिल्कुल ही नाश हो जाता है। हमारे भौतिक देह को देखिए, ये पृथ्वी लोक को देखिए, एक पेड़ को देखिए, एक पशु के शरीर को देखिए, सब ये छह तरह के परिवर्तन होते हैं। जो भी भौतिक चीज है उसको ये छह तरह के परिवर्तन होते हैं, पर जो आध्यात्मिक चीज है, आध्यात्मिक चीज अमर होता है, आत्मा अमर है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, शाश्वत है। इसलिए भगवान का शरीर जो है वो कभी भी वो बदलता नहीं है भौतिक दृष्टि से, हमेशा भगवान उतने ही फ्रेश लगते हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगता, आपने कभी श्री कृष्ण का फोटो देखा है बुढ़ापे में? कभी नहीं देखा होगा। हालांकि कुरुक्षेत्र के रणभूमि पे उनका उम्र करीब 125 साल का था, अभी हम लोग 50 साल के भी हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि बाल जो है सफेद होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे से शरीर में कमजोरी आने लगती है, और 60-70 साल के हो जाते हैं तो बहुत ही तकलीफ हो जाने लगती है, और 100 साल के कोई हो जाता है तो उसको फोटो जो है पेपर में आ जाता है इस प्रकार से। पर भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में थे तो 125 साल के थे वो, और कैसे लग रहे थे, बिल्कुल एक 16 या 20 साल के नवयुवक की तरह लग रहे थे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं नव यौवनम च, कि श्री कृष्ण है हमेशा एक नवयुवक के समान रहते हैं, हमेशा फ्रेश। ऐसा कभी नहीं है कि उनका बुढ़ापा आता है, क्योंकि उनका शरीर कभी बदलता नहीं है। वो लीला तो करते हैं कि वो बाल लीला करते हैं, अपने बचपन से बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर धीरे धीरे से वो 10 साल के हो जाते हैं, और जब वो 10 साल की उम्र उनकी हो जाती है तो ऐसे लगता है कि वो 15-16 साल के लड़के हैं, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी ज्यादा है। इसलिए 10 साल के बालक होने के नाते ऐसा लगता है कि वो 15-16 साल के हैं, और उसके बाद उनका शरीर कभी बदलता नहीं है। 16 साल की उम्र तक के शरीर जैसे ही रहता है हमेशा के लिए। इसलिए श्री कृष्ण को आप वैसे ही देखेंगे तो 16 या 20 साल आप कभी श्री कृष्ण को बूढ़े अवस्था में नहीं देखेंगे। जैसे हम देखते हैं यूरोपीय काफी इतिहास हैं जिनमें बताया जाता है भगवान को एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति की तरह बताया गया है, और बहुत ही थके हुए व्यक्ति की तरह, और ये बताया गया है कि वो सारे पृथ्वी को अपने कंधे पे ले जा रहे हैं, और क्योंकि पृथ्वी का बोझ इतना भारी है तो वो झुके हुए हैं थकावट के मारे, और किसी न किसी तरह बहुत तकलीफ से, जैसे आप स्टेशन पर जाते हैं रेलवे स्टेशन पर सामान लेकर किसी न किसी तरह हड़बड़ाते हुए भारी सामान लेकर चलते हैं, तो उसी प्रकार उन्होंने एक पिक्चर बताया है कि भगवान पृथ्वी को लेकर ब्रह्मांड को लेकर किसी न किसी तरह हड़बड़ाते हुए चलते हैं, और क्योंकि भगवान अनादिकाल से वो सब कुछ संभाल रहे हैं तो सोचते हैं कि भगवान बूढ़े होंगे इसलिए उनको लंबी सफेद दाढ़ी बनाई है, इस तरह से उनका वर्णन किया गया है, चरित्र बनाया है। पर वास्तव में भगवान ऐसे नहीं है, भगवान नव यौवनम च, क्योंकि उनका शरीर कभी बदलता नहीं है, फ्रेश रहता है, ये 6 परिवर्तन वो नहीं आते हैं। इसी का मतलब है सत चित आनंद विग्रह, उनका शरीर है अव्ययम, अव्ययम का मतलब है कभी नाश नहीं होता है। तो ये है आध्यात्मिक शरीर भगवान का, और इसीलिए उनका कभी जन्म भी नहीं होता, उनकी कभी मृत्यु भी नहीं होती। जो हम जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान के आविर्भाव दिवस, तिरुभाव दिवस मनाते हैं, ये वास्तव में ये उनका जन्मदिन नहीं है। भगवान का कभी जन्म नहीं हो सकता, जो अमर है उसका जन्म कैसे हो सकता है। वास्तव में आत्मा का भी जब जन्म नहीं होता तो फिर भगवान का कैसे जन्म हो सकता है। जिस प्रकार से सूरज का उदय होता है और फिर सूरज अस्त हो जाती है, उसी तरह से भगवान भी अपनी लीला प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, और फिर से कई साल यहाँ रहते हैं और यहाँ अपनी लीला सबके लिए दर्शाते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं। तो उनका प्रकट होना, हमारे दृष्टि के सामने प्रकट होना, उसको हम कहते हैं उनका जन्म हुआ है, और जब वो अप्रकट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब वो यहाँ से चले गए, उनका तिरोभाव होना। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। जो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को पहचान लेता है उसे पुनः ये भौतिक शरीर में जन्म नहीं लेना पड़ता। मामेति सो अर्जुना, ऐसे व्यक्ति को मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी ही अर्जुन, श्री कृष्ण उनको कहते हैं। यानी श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समझना, श्री कृष्ण का देह और उनके पर्सनैलिटी को समझना ये बहुत जरूरी है, और जो व्यक्ति इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेता है वो भगवान के धाम जाने का योग्य हो जाता है। तो उनका जन्म, उनका उनका देह, उनका शरीर, उनके कार्य, ये पूर्ण आध्यात्मिक है, और इसलिए यहाँ इतने सारे जो डिस्क्रिप्शन यहाँ बताए गए हैं, और ब्रह्मा जी आगे भी बताते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वो कहते हैं कि ये जो गोविंद हैं, जो आदि पुरुष हैं, ये इनकी अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, इनकी जो इंद्रियां हैं ये कोई साधारण इंद्रियां नहीं है। आध्यात्मिक शरीर या आध्यात्मिक देह होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि इंद्रियां जो है वो साधारण इंद्रियां नहीं है। जैसे हमारे हाथों से हम सिर्फ जो काम कर सकते हैं वो आंखों से नहीं कर सकते, आंखों से हम सिर्फ देख सकते हैं, कानों से हम सिर्फ सुन सकते हैं, पर भगवान के सारी इंद्रियां हैं, वो हर एक इंद्रिया से बाकी जो भी इंद्रियां हैं उनके सारे सबके काम कर सकते हैं। अपने आंखों से वो देख तो सकते हैं, पर अपने आंखों से वो सुन भी सकते हैं, अपने आंखों से चख भी सकते हैं, अपने आंखों से कुछ चीज हिला भी सकते हैं, अपने कानों से देख सकते हैं, अपने हाथों से देख सकते हैं, और अपने आंखों से स्पर्श कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। तो हम देखते ये इसका मतलब है भगवान। इसलिए जब हम भगवान को नैवेद्य के रूप में भोजन हम अर्पण करते हैं, प्रसाद भोग चढ़ाते हैं भगवान को, तब भगवान स्वीकार कैसे करते हैं? भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। वो कहते हैं चाहे तो मुझे कोई पत्र, एक पुष्प, थोड़ा जल, थोड़ा भी कुछ तुम ऐसे मुझे अर्पण करो, पर अगर प्रेम से अर्पण करो तो मैं बहुत ही प्रेम से मैं स्वीकार कर लेता हूं। और जब हम भोग चढ़ाते हैं भगवान को तो हम कहते हैं कि चलो भगवान ने अभी स्वीकार कर लिया, अब ये भोग नहीं रहा, अब ये प्रसाद हो गया, तो ये प्रसाद हम बांटेंगे, सबको बांट देंगे। तो ये प्रसाद कैसे हुआ? वैसे भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो थाली में जो भी भोजन है, जो पहले रखा हुआ था, वही भोजन रहता है। अगर आपके सामने कोई स्वादिष्ट भोजन रखे और 5 मिनट के बाद प्लेट खाली हो जाएगा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी वगैरह आपके सामने रख दे, तो आप जब स्वीकार करेंगे तो सब बाकी आपके पेट में चला जाएगा। पर भगवान जब स्वीकार करते हैं तो वो ऐसे स्वीकार नहीं करते, वो अपने आंखों से स्वीकार कर लेते हैं, और आंखों से वो साफ सब कुछ चख लेते हैं और देख भी लेते हैं, खा भी लेते हैं। और उनका खाना और हमारा खाना अलग है। हम जब खाते हैं तो वो चीज कम हो जाता है, वहां रहता नहीं है, पर भगवान जब खाते हैं तो खाते भी हैं और वो चीज वहां भी रह जाता है। इसको कहते हैं अचिंत्य। अचिंत्य यानी हमारे भौतिक बुद्धि के बाहर। इसीलिए वो साधारण भोग जो है, साधारण भोजन है, वो प्रसाद बन जाता है। तो अगर भगवान अपने आंखों से खा नहीं सकते तो प्रसाद कैसे हो सकता था? प्रसाद का कोई मतलब ही नहीं रहता था। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए वो मूर्ति के रूप में आते हैं, अर्च विग्रह। ये मूर्ति है, ये कोई साधारण पत्थर की प्रतिमा नहीं है, ये कोई स्टैचू नहीं है, साधारण स्टैचू नहीं है। भगवान यहां बताया गया है कि परिभू। परिभू का मतलब है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सबसे महान है। और शुक्रम, शुक्रम का मतलब जो भी कुछ चाहे वो कर सकते हैं। वो सिर्फ विचार करते हैं और उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। अगर हमारी इच्छा को हमें पूर्ति करनी है तो हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आपको अगर दफ्तर में आपको थोड़े पैसे चाहिए तो सारा महीना भर काम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। पर भगवान को सारी सृष्टि की रचना करनी पड़ती है, सिर्फ योग निद्रा में रहते हैं और विचार करते हैं और सब कुछ हो जाता है। जैसे बाइबल में कहावत है लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, यानी भगवान सोचते हैं कि प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। तो भगवान सिर्फ इच्छा करते हैं, सब कुछ हो जाता है, वो हमारे जैसे नहीं है। इसका मतलब है पूर्ण आध्यात्मिक शरीर। सिर्फ विचार करने से उनके हाथों का काम ही हो जाता है। और इसीलिए हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान जो कि शुक्रम है, जो कि सब कुछ कर सकते हैं, वो एक पत्थर के मूर्ति में अपने आप को प्रवेश करते हैं ताकि वो हमारी सेवा को स्वीकार करें। अभी कई लोग कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति में भगवान कैसे आ सकते हैं? वास्तव में ऐसा क्या चीज है जो कि भगवान के लिए असंभव है? भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, स्वराट, पूर्ण स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है। अगर वो सर्वशक्तिमान नहीं होते तो उनके भगवान होने का कोई मतलब नहीं रहता। तो क्योंकि वो पूर्ण शक्तिमान है तो वो मूर्ति में आ जाते हैं। मूर्ति में स्वीकार करते हैं, वो प्रवेश कर लेते हैं। पर कैसे आते हैं? जब भगवान के शुद्ध भक्त उनको निमंत्रण देते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप आके इसमें आप प्रवेश कीजिए और हमारी सेवा को आप स्वीकार कीजिए। इसीलिए जब मूर्ति की स्थापना होती है तो उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। ऐसे ही मूर्ति रख के पूजा नहीं करते, प्राण प्रतिष्ठा यानी भगवान को स्वागत करते हैं हम कि हे प्रभु आप आइए कृपया और आप आपका स्थान यहाँ आप ले लीजिए। तो भगवान भक्त के प्रेम से प्रभावित होकर वो पत्थर की मूर्ति में आकर स्वयं उस साक्षात भगवान हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि अर्च विग्रह, इसलिए इसको अर्च विग्रह कहा गया है, सिर्फ स्टैचू नहीं बताया गया। अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान का अर्च विग्रह साक्षात भगवान ही है। और इसलिए हमें भगवान की मूर्ति को भी उसी सम्मान से, उसी प्रेम से हमें व्यवहार करना चाहिए। और वो भगवान में जो कि मूर्ति रूप में है और भगवान जो कि अपने धाम में है, उनमें कोई अंतर नहीं है। हम तो जो भगवान के धाम में जो भगवान बैठे हैं, हमारे हृदय में जो भगवान बैठे हैं, उनको हम देख नहीं सकते, पर अवश्य मंदिर में जो भगवान है हम तो उनको देख सकते हैं। और भगवान ये ऐसे भौतिक रूप में आकर हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, पर फिर भी वो भौतिक नहीं है, हमारी सीमित दृष्टि के सामने प्रकट होने के लिए वो ऐसा करते हैं। पर फिर भी ये श्रद्धा की बात है, जिस व्यक्ति को ये श्रद्धा है उसको भगवान की मूर्ति के साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है, ये सत्य की बात है। जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति है वो ये जान सकता है, जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति नहीं है उसके लिए तो ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति रह जाती है। कई लोग कहते हैं कि हम तो पत्थर की इसमें नहीं मानते, पर फिर भी अपने घर में अपने माता पिता की फोटो रखते हैं जो कि गुजर गए होंगे। अगर माता पिता गुजर गए हैं तो फोटो रखने का क्या मतलब है? कहने का मतलब फोटो का कोई महत्व है? हालांकि वो सामने नहीं है। आप देखते हैं कि आपके माता पिता या आपके कोई प्रिय व्यक्ति वो फोटो में मौजूद हैं, इसलिए आप सामने रखते हैं, पूजा करते हैं। उसी प्रकार ये मूर्ति में भी भगवान साक्षात मौजूद हैं। और कोई लोग कहते हैं कि भगवान तो सब जगह हैं, भगवान हम मंदिर में नहीं हो सकते, भगवान मूर्ति में नहीं हो सकते। पर बात यह है कि अगर भगवान सब जगह हैं तो क्या वो मंदिर में नहीं हो सकते? सारे दुनिया में हो सकते पर मंदिर में नहीं हो सकते, ये कैसे संभव है? सब जगह तो अवश्य है ही, पर क्योंकि हमारी दृष्टि महाभागवत की तरह नहीं है जहां कि हम सब जगह भगवान को देख सकें, इसलिए भगवान मंदिर में प्रवेश करते हैं और अर्च विग्रह या मूर्ति के रूप में वो प्रवेश करते हैं। अगर हमारी दृष्टि सब, अगर हम सब लोग महाभागवत होते और अगर हम सब जगह भगवान को देखते और सब चीजों को भगवान के अंदर देखते तो भगवान के अर्च विग्रह की कोई आवश्यकता नहीं होती। पर क्योंकि हमारी दृष्टि अभी पूर्ण नहीं है, दूषित है, इसीलिए भगवान अपनी कृपा से ये मूर्ति रूप लेकर आते हैं। ऐसे कई लीलाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से महान भक्त जो है उन्होंने भगवान के श्री विग्रह के साथ, उनके मूर्ति के साथ बड़ा आनंद से प्रेम का आदान प्रदान किया है। सनातन गोस्वामी नाम के एक बड़े भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही प्रिय शिष्य थे वो, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, सनातन गोस्वामी। तो उनके प्रिय विग्रह का नाम था मदन मोहन, तो मदन मोहन जी की पूजा करते थे और पूजा करते करते और चैतन्य महाप्रभु ने उनको आज्ञा दिया था कि आपको जो है ग्रंथ लिखने होंगे, जो ये भक्ति मार्ग को सारे आम जनता के लिए समझाने के लिए आप ऐसे आसान तरीके से ये भक्ति शास्त्र आप लिखो। तो सारा दिन सनातन गोस्वामी जो है वो शास्त्र लिखते थे और थोड़ा बहुत मदन मोहन जी की भी सेवा कर लेते थे, पर वो इतनी उनको ग्रंथ लिखने का सेवा इतना था कि मदन मोहन जी का देखभाल करने के लिए उनको ज्यादा समय नहीं मिलता था। तो बहुत ही उनका मीठा रिश्ता था मदन मोहन जी के साथ। तो एक बार मदन मोहन जी उनको बोलने लगे कि अरे भाई सनातन, देखो तुम मुझे क्या खिला रहे हो, कभी सोचा है कि नहीं? हर रोज मुझे तुम भोग खिलाते हो, अभी देखो क्या रोटी है, देखो ये तो एक साइड में जली हुई है, रूखी सूखी रोटी है, ठीक तरह से बनाए भी नहीं है, और नमक भी नहीं डाला है रोटी में, कम से कम थोड़ा नमक तो डाल दिया होता। अब मेरा तो विचार करो कि मैं कैसे यहाँ रह रहा हूँ, तुम मेरे पूजा कर रहे हो, थोड़ा रोटी में नमक तो डाल दिया करो। तो सनातन गोस्वामी उनसे कहने लगे, देखो जी अगर आपको रोटी खाना है तो खाओ, देखो हमें तो ग्रंथ बहुत लिखने हैं, हाँ चैतन्य महाप्रभु हमारे गुरु महाराज ने हमको बहुत बताया कि आपको ये सेवा करनी है वो सेवा करनी है, अभी तो हमको बहुत काम पड़ा है। अरे आपके लिए नमक डालेंगे, रसगुल्ला बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, कैसे संभव है? फिर हम कौन लिखने वाले हैं ये शास्त्र, सारे जन कल्याण के लिए ग्रंथ कौन लिखने वाला है? तो देखो जो मैंने दिया है सो खाओ और उसमें संतुष्ट रहो। तो इस प्रकार से भक्त के बीच में और विग्रह के बीच में लीलाएं चलती रहती थी। हम इसका इसकी नकल नहीं कर सकते, हम जब अर्च विग्रह के सामने जाते हैं तो हम पूरी सम्मान से के साथ ही जाते हैं, हम इस तरह से व्यवहार नहीं करते क्योंकि हम हमारा स्तर वो नहीं है। पर ये कहने का मतलब ये है कि अर्च विग्रह भी साक्षात भगवान ही है, और जो भगवान का स्वरूप हम देखते हैं ठीक उसी तरह से ही भगवान वो उनके धाम में है। एक बार मेरे गुरु महाराज को किसी ने पूछा, ये जो श्याम सुंदर जी का की मूर्ति है आपके मंदिर में, गोपीनाथ जी की मूर्ति है, हमारा मंदिर का नाम है राधा गोपीनाथ मंदिर, तो ये गोपीनाथ जी की मूर्ति है, क्या भगवान भगवान के धाम में जो है ऐसे ही लगते हैं, ऐसे ही दिखते हैं क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, अगर ऐसे नहीं दिखते हैं तो मैं वहां नहीं जाना चाहता। कहने का मतलब है कि भगवान ऐसे ही दिखते हैं, तो जैसे शास्त्रों में भगवान का वर्णन किया गया है वैसे ही मूर्ति रूप बनाया जाता है। साधारण स्टैच्यू हम कोई भी अपने मनगढ़ंत जो विचार है उससे हम बनाते रहेंगे कि भगवान ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, ये अर्च विग्रह नहीं है। अर्च विग्रह का मतलब है कि जो शास्त्रों के आधार पर बनाया जाता है, शास्त्रों के अनुसार जो बताया जाता है, और जो शुद्ध भक्त हैं क्योंकि साक्षात अपने आंखों के सामने भगवान को 24 घंटे देखते रहते हैं, अगर कुछ गलती भी हो जाए तो बताते हैं, नहीं नहीं उनका हाथ ऐसे होना चाहिए, उनका कान ऐसे होना चाहिए, उनका नाक ऐसे होना चाहिए। एक बार हमारे परम गुरु जिनका नाम श्रील प्रभुपाद है, वो जब पश्चिम देशों में गए थे तो उन्होंने बहुत नए नए भक्त बनाए, और वहां पश्चिम देशों ने किसी श्री कृष्ण का नाम सुना नहीं था, तो उनमें से कई लोग ऐसे भी थे कि चित्रकार थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको श्री कृष्ण के चित्र बनाने के लिए उनको सेवा में लगा दिया। तो कई ऐसे भगवान के चित्र बनाते थे, भगवान की लीलाओं के चित्र बनाते थे, पेंटिंग्स वगैरह। तो एक उनकी शिष्या थी जो बहुत अच्छे पेंटिंग करती थी, तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि आप अभी गोवर्धन लीला का, आप गोवर्धनधारी गिरधारी का आप पिक्चर बनाओ। तो वो बनाने लगी, सोचने लगी कि देखो अब भगवान ने सारा पर्वत अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पर धारण किया है तो अवश्य उनके अंदर बहुत शक्ति होगा। अब ये भौतिक दुनिया में कोई शक्तिशाली व्यक्ति आप देखेंगे तो दिखने में कैसे लगते हैं, बड़े बड़े मसल रहते हैं, बड़े मिस्टर यूनिवर्स जैसे रहते हैं, बड़े बड़े पहलवान की तरह लगते हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण को बड़े पहलवान के रूप में बनाया। उनको तो श्री कृष्ण क्या है वो पता नहीं था, पश्चिम देश में जन्म हुआ उनका, उनको कोई खास संस्कार ऐसे मिले नहीं थे इस जन्म में, पिछले जन्म में तो अवश्य मिले थे इसलिए वो भक्ति में आ सके, पर इस जन्म में तो कोई नहीं थे। तो अपने मन के विचार से बनाने लगे कि बड़ा पहलवान कृष्ण को बना दिया। तो प्रभुपाद जी ने देखा तो हंसने लगे, क्या कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, श्री कृष्ण तो है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो परफेक्ट है, उनके जो हाथों की लंबाई, उनकी उंगलियों की लंबाई, उंगलियों की चौड़ाई, हाथों की चौड़ाई, उनका जो छाती की जो चौड़ाई है और उनका प्रोपोर्शन है, चौड़ाई कितना होना चाहिए, लंबाई कितना होना चाहिए, नाक का आकार कैसे होना चाहिए, कान कैसा होना चाहिए, आंखें कैसे होनी चाहिए, आंखों का रंग कैसा होना चाहिए, त्वचा का किस क्या रंग होना चाहिए, सब कुछ डाउन टू फाइनेस्ट डिटेल, बिल्कुल छोटे से छोटे डिटेल तक उन्होंने बताया, देखो ऐसा करना चाहिए, अभी तुमने हाथ ऐसा कर लिया, अभी उंगली इस तरह से बनाओ, फिर वो पेंटिंग करते, नहीं नहीं ऐसा ठीक नहीं हुआ, अभी ऐसे बनाओ, क्योंकि वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देख रहे थे अपने आंखों के सामने इसलिए वो कह पाए। उसके अलावा शास्त्रों में भी वर्णन है, तो ये क्या सब इनका जो अनुभव है वो सब झूठा है? ये साक्षात जो भगवान को देख रहे हैं ये तो ये सत्य है, हम जो हमारे सामने ये जो भौतिक रूप में देख रहे हैं ये मिथ्या है, ये माया है, वह जो साक्षात भगवान ऐसे महाभागवतों के सामने प्रकट होते हैं तो वो सत्य है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो यहाँ वर्णन किया है आठवें मंत्र में वो भगवान के श्री रूप के बारे में वर्णन किया है। तो हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान का रूप है और उनका निराकार भी उनकी अवस्था है। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान का पर्सनल फॉर्म तो है ही, भगवान का साकार रूप तो है ही, पर साकार रूप से परमात्मा रूप आता है और निराकार रूप भी आता है। ब्रह्मण हुई प्रतिष्ठा हम, जो भगवान का निराकार रूप है वो श्री कृष्ण में स्थित है। तो अवश्य भगवान का निराकार रूप तो है ही, पर वो निराकार रूप उनका सबसे ऊंचा जो सत्य नहीं है, ऊंचा रूप नहीं है, सबसे ऊंचा रूप ओरिजिनल रूप है उनका श्री कृष्ण का रूप, श्याम सुंदर श्री कृष्ण का रूप। यह है श्रीमद् भागवत के आधार पे भगवान की जानकारी, भगवान का ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञानम। तो आगे इस उपनिषद में नौवें मंत्र में यह बताया है, कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। अंधम तम प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूया इवते तमो यौ विद्यायं रता। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के परिशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम भाग में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के परिशीलन में लगे हुए हैं। तो यहां पे विद्या और अविद्या इन दोनों में हमें अंतर बताया गया है। विद्या यानी सच्चा ज्ञान, अविद्या यानी अज्ञान। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करना, जो भगवत ज्ञान है। और भगवत ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होना चाहिए, भगवान बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो कौन से निर्णय पर पहुंच जाता है, क्या निर्णय पहुंच जाता है, वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव श्री कृष्ण सब कुछ है, वो सर्व कारणों के कारण है, वो सब कुछ है और उनके शरण में आना ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए भगवद गीता में और एक जगह भी श्री कृष्ण बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्विता, कि मैं सारे आध्यात्मिक और भौतिक लोगों का स्रोत हूं और जो लोग, जो महात्मा लोग इसे जानते हैं, इस तत्व को जानते हैं, वो मेरी भक्ति करते हैं। तो ज्ञान की परिपूर्णता क्या है, भगवान की भक्ति करना। ज्ञान का मतलब है कि भगवान को जानना, हमारे स्वरूप को, हमारे स्थान को जानना, भगवान के प्रति हमारा जो रिश्ता है उसे पहचानना और ये कार्य में लग जाना। तो ये समझना बहुत मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि आत्म साक्षात्कार में तीन स्तर होते हैं, इनका नाम है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब है जब जीव समझ जाता है कि मेरे बीच में और भगवान के बीच में क्या संबंध है। उसके पहले यह जानना कि मैं हूं कौन, मैं ये आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और फिर मेरे बीच में और भगवान के बीच में क्या संबंध है। पहला संबंध, पहला स्तर। दूसरा स्तर है अभिधेय। अभिधेय का मतलब है कि अपने संबंध के अनुसार कार्य करना। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि ये मेरा मित्र है, तो मित्रों के बीच में रिश्ता क्या होता है, मित्रों के बीच में कैसे कार्य चलते हैं। अगर आप दूसरों के बीच में मित्रता के कार्य नहीं होते हैं, कोई प्रेम का आदान प्रदान नहीं है, तो फिर कैसे मित्र हुए आप। एक पिता है और बेटा है, अगर एक पिता अपने बेटे को पिता का प्रेम नहीं देता है, पिता की तरह बेटे से व्यवहार नहीं करता, तो ये पिता बेटे का संबंध क्या हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो संबंध है पिता और बेटा, पर वो संबंध के अनुसार उसे दोनों को कार्य भी करने चाहिए, तब जाकर ये संबंध परिपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार जब हम हमारे बीच में और भगवान के बीच में संबंध क्या है इसे समझ जाते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप है कि वो नित्य भगवान का दास है, जब ये सत्य को ये तत्व को समझ जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, ये रिश्ता ये संबंध के अनुसार उसे कार्य करनी चाहिए, यानी क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो जब जीव अपने संबंध भगवान के प्रति संबंध को समझ कर भगवान की सेवा में लग जाता है उसे अभिधेय कहते हैं। एक बार जब वो सेवा में लग जाता है तो धीरे 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 फिर क्या होता है, उसके हृदय की शुद्धिकरण हो जाती है और फिर बहुत धीरे से उसके हृदय में भक्ति की भक्ति जागृत हो जाती है। और भक्ति जागृत होने के बाद में क्या होता है, वैसे जैसे जैसे वो सेवा करते रहता है क्या होता है, प्रयोजन, प्रयोजन यानी जो कार्य है जो सेवा है उसका अंत क्या होता है, कहां तक पहुंचता है ये, इसका परिणाम क्या होता है, भगवत भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगत से जायते, कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने लगता है उसका परिणाम क्या होता है, एवं प्रसन्न मनसो, उसका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, बिल्कुल उसका उसका चित्त जो खिल उठता है, आनंद से भर जाता है। क्यों भर जाता है, भगवत भक्ति योग्यता है, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति की है, भगवान की सेवा की है, इसलिए एवं प्रसन्न मनसो। और ऐसे स्थिति में क्या होता है, भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के तत्व को पूरी तरह से वो समझ सकता है, समझ लेता है, और मुक्त अवस्था में मुक्त संग से जायते, इसलिए ऐसे अवस्था में वो शुद्ध भक्ति के स्तर में पहुंच जाता है। ये प्रयोजन है, ये हमारा लक्ष्य है। तो तीन चीजें हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है। तो ये है विद्या, ये है ज्ञान। और जब तक कोई व्यक्ति इस निर्णय पर नहीं पहुंचता है और इस मार्ग में शुरुआत नहीं करता, तब तक हमें कहना चाहिए कि वो अविद्या या अज्ञान के मार्ग में है। कोई भी शास्त्र में भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि ज्ञान का मतलब है PhD हासिल करना, BA MA हासिल करना, या अच्छे से नौकरी प्राप्त करना, या बड़े बड़े उपन्यास लिखना, या बहुत पंडित हो जाना, या सारे संस्कृत का जो व्याकरण है उसको उसके ऊपर मास्टरी कर लेना। भगवान ऐसा कभी नहीं बताते। भगवान बताते ज्ञान का मतलब क्या है, शुरुआत क्या है, शरीर और आत्मा में अंतर समझो, ये ज्ञान की शुरुआत भगवान बताते हैं। और अंत क्या है, वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण सब कुछ है, मुझे इनके शरण में जाना चाहिए, बस। यह है विद्या, यह है ज्ञान। और इससे अलग जो भी कुछ ज्ञान है, तथाकथित ज्ञान, तथाकथित विद्या, यह वास्तव में विद्या नहीं है, अविद्या है। जो आजकल हमारे बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री दे दे रहे हैं, और जो बड़े बड़े लोगों को समाज में बड़ा नाम दिया जाता है कि ये विद्वान हैं, ये पंडित हैं, ये बहुत ही ये बड़े बड़े आदमी हैं, ये वास्तव में ज्ञानी नहीं है, वो ये वास्तव में सब अज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या होना चाहिए, जब तक हमें ये ज्ञान ये भौतिक पीड़ाओं से मुक्ति नहीं देता तब तक वो ज्ञान नहीं कहलाता। ज्ञान की परिभाषा भी भगवान देते हैं 9वें अध्याय में भगवत गीता के, वो कहते हैं, इदम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात। वो कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें ये बहुत गुह्य ज्ञान इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम ईर्ष्यालु नहीं हो, और जब तुम ये ज्ञान समझ लोगे और ये ज्ञान विज्ञान में बदल जाएगा, यानी विज्ञान का मतलब है अनुभव, ज्ञान यानी मानसिक या बुद्धि के स्तर पर समझना, और विज्ञान यानी हृदय के स्तर पर समझ लेना, अनुभव हो जाना, वही ज्ञान का अनुभव जब हो जाता है उसे विज्ञान कहते हैं। तो जब तुम्हें ये ज्ञान और विज्ञान हो जाएगा तब क्या होगा, यह ज्ञात्वा मोक्ष से शुभार, ये जो भौतिक दुनिया की जो पीड़ाएं हैं
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, ये इनसे तुम मुक्त हो जाओगे। तो ज्ञान की परीक्षा क्या है, हम कैसे समझ सकते हैं कि ये कोई सच्चा ज्ञान है कि नहीं है? क्या आपको भौतिक बंधन से वो छुटकारा दे सकता है? ये सांसारिक दुखों से आपको मुक्ति दिला सकता है? आपको भगवान की भक्ति दिला सकता है? अगर हाँ तो वो ज्ञान है, अगर नहीं तो वो अज्ञान है। बहुत सरल है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो अगर कोई भी बड़ा बड़ा पीएचडी आदमी भी आए और बड़ा गणित में विद्वान हो, या वो इतिहास में बहुत पढ़ा लिखा हो, या बहुत बड़ा कवि हो, हा? या बहुत बड़ा चित्रकार हो, या बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, फिर भी जब तक वो ये नहीं जानता कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तब तक हमें समझना चाहिए पीएचडी बीए एमए जो भी हो ये अज्ञानी है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे कि जो विदेशों में जो बड़े बड़े पीएचडी हैं, जो जिनको नोबेल प्राइज मिलता है, बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, वो अज्ञानी है, क्योंकि वो नहीं जानते कि मृत्यु के बाद भी कुछ है भी या नहीं। वो एक बार रशिया में गए थे, रूस देश में गए थे, और वहां पर एक बड़े प्रोफेसर से मिले जिनका नाम था प्रोफेसर कोटोवस्की। और ये प्रोफेसर कोटोवस्की जो भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रोफेसर थे, तो जब उन्होंने ऐसा एक पद उनका वो पद में थे, तो अवश्य उनको जानकारी होनी चाहिए थी कि भगवद गीता क्या है, ये जो हमारा दर्शन, ये जो फिलॉसफी है वो क्या है। पर जब वो प्रभुपाद जी से मिले तो कहने लगे कि गुरु जी देखिए, मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद जी आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि देखो, ये इतना बड़ा प्रोफेसर है और ऐसे पद में है, और फिर भी कहता है कि मृत्यु के बाद कुछ होता ही नहीं है, पूर्व जन्म के बाद में पिछले जन्म के बारे में विश्वास ही नहीं करता। तो ऐसे लोग कहते थे कि ये तथाकथित ज्ञानी है, वास्तव में ज्ञान नहीं जानते वो, पर ये अज्ञानी है। और वो कहते थे कि हमारे देश में जो गांव में जो साधारण किसान है, जो हल चला के खेती करता है, वो भी जानता है कि मेरे पिछले कर्मों के अनुसार मुझे कर्म भुगतना पड़ेगा, और जैसे मैं अब कर्म करूंगा उस प्रकार मुझे अगले जन्म में मुझे भुगतना पड़ेगा। वो एक साधारण किसान भी जो खेती कर रहा है वो भी जानता है। तो वास्तव में ये ज्ञानी है और वो अज्ञानी है। पर आजकल कलयुग में खास करके ज्ञानी अज्ञानी बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। जो वास्तव में अज्ञानी हैं उनको ज्ञानी माना जाता है, और जो वास्तव में ज्ञानी हैं उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता, उनको कोई उनकी ओर कोई देखता नहीं है। तो इसलिए यहां बताया गया है कि जो लोग अज्ञान की अनुशीलना करते हैं उनको बिल्कुल अंधकार में जाना पड़ता है, उनका अगला जन्म भी वैसे ही होगा। और जो लोग और यहां ये बताया गया कि उससे भी पतित वो हैं जो कि अपने आप को ज्ञानी के रूप में पेश करते हैं, उनसे भी बुरा परिणाम उनका होगा। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अज्ञानी है पर ईर्ष्यालु नहीं है, तो वो भगवत तत्व या भगवान का ज्ञान वो प्राप्त कर सकता है। पर जो व्यक्ति सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूं और अपने आप को ऐसे समाज के सामने प्रस्तुत करता है, वो धोखेबाज है, और वो अपने आप तो गलत रास्ते जा ही रहा है पर सारे समाज को भी वो गलत रास्ते में ले जा रहा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत खतरनाक होता है। और ऐसे लोगों को जो इनोसेंट, जो आम जनता है, जो कि जिनको ज्ञान नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति को बड़ा ऊंचा स्थान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और फिर वो भी गलत रास्ते में चले जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को तथाकथित ज्ञानी बताया गया है, वास्तव में ज्ञानी नहीं है। तो इसीलिए हमें ऐसे ज्ञानियों से, तथाकथित ज्ञानियों से होशियार रहना चाहिए कि जो समाज में बड़े नाम लेकर जाते हैं। देखिए, कोई आदमी जो सोया हुआ है उसको हम जगा सकते हैं, मुश्किल नहीं है, पर जो आदमी सोने का नकल कर रहा है उसको जगाना तो असंभव है। सही बात है, वो उठेगा ही नहीं। उसी तरह से ये जो अज्ञानी पुरुष है उसको ज्ञान देना आसान है, क्योंकि वो ईर्ष्यालु नहीं होते। पर जो लोग समझते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं या मैं ज्ञानी हूं, उनको ज्ञान देना बहुत मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो इसलिए यहां बताया कि ऐसे लोगों के लिए तो उनका तो परिणाम तो बहुत बुरा होगा, बहुत ही ज्यादा घोर अंधकार में वो जाएंगे। और ऐसे तथाकथित ज्ञानियों में कई श्रेणियां हैं, इनको वेदवाद रता कहते हैं भगवद गीता में। ऐसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते अविपश्चितः। वो कहते हैं कि वेदों के पुष्पिताम वाचम, जो बड़े जो मीठे मीठे मधुर मंत्र हैं, उनको सुनने में बहुत मधुर आवाज में सुनने में बहुत आनंद आता है। अविपश्चितः, जो लोग वास्तव में बुद्धिमान नहीं है उनको कहते हैं वेदवाद रतः पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिनः। ऐसे लोगों को जो कि सिर्फ वेदों के मंत्रों से आकर्षित हो जाते हैं, पर वेदों के मंत्रों का सार क्या है, इनके पीछे जो सच्चा ज्ञान क्या है वो ये नहीं जानते, ऐसे लोगों को वेदवाद रतः कहते हैं। यानी तथा कथित वेदों को मानने वाले, सच्चे नहीं मानते वेदों को, पर सिर्फ वो वेदों के मंत्रों से प्रभावित हो जाते हैं और सोचते हैं कि यही सब कुछ है। और वो क्या समझते हैं कि वेदों के मंत्रों का अर्थ क्या है, कामात्मानम स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रियावशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, कि स्वर्ग की प्राप्ति करना और बड़ा नाम कमाना, बड़ा इज्जत कमाना, भोग करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, यही सब कुछ है और यही वेदों के मंत्रों का उद्देश्य है, ये इनका विचार है। तो ऐसे लोग जो वेदों का ज्ञान समाज में प्रस्तुत करते हैं तो ये सारे समाज को भी वो इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में ले जाते हैं, या तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पे वो उनको नरक की ओर ले जाते हैं। में हमें बताया गया है कि अज्ञानी जो है वो भी भला अच्छा है, पर जो अज्ञान के जो ज्ञान के नाम पे दूसरों को धोखा देता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में हमें बहुत ही होशियार रहना चाहिए। तो आज का प्रवचन हम यहाँ खत्म करते हैं और अगली बार भी कई काफी इंटरेस्टिंग मतलब श्लोक हैं ज्ञान के बारे में, ज्ञान और अज्ञान के बारे में, विद्या और अविद्या के बारे में, ये हम अगली बार जब आएंगे उस समय हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा सवाल किया आपने कि अगर भगवान की मूर्ति में और भगवान में कोई अंतर नहीं है और भगवान का रूप है वही मूर्ति का रूप है, तो हमारे देश में हम इतने सारे मूर्तियां क्यों देखते हैं, नाना प्रकार के जो रूप होते हैं ऐसे क्यों देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो भी मूर्ति आप देखते हैं वो साक्षात भगवान ही है। अगर कोई भी शास्त्रों के आधार से शुद्ध भक्त के शिक्षा के अनुसार, उनके गाइडेंस के अनुसार अगर वो मूर्ति की स्थापना नहीं की गई है तो उसमें साक्षात भगवान नहीं आते। और जो वर्णन शास्त्र में किया गया है और जो शुद्ध भक्तों ने जो बताया है उसी अनुसार मूर्ति को बनाना चाहिए, वैसे ही वर्णन होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो फिर सही मूर्ति नहीं है, ये पहली बात। और जो सही मूर्तियां हैं अभी वो भी साक्षात भगवान ही है, क्योंकि भगवान के नाना रूप होते हैं। रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन नानावतार मकरात भुवनेशु किंतु। वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के नाना प्रकार के रूप होते हैं, अनंत कोटि उनके रूप होते हैं, क्योंकि भगवान असीमित हैं और उनकी असीमित जो विस्तारित रूप भी होते हैं, सब भगवान के रूप हैं, पर इनकी शुरुआत है भगवान कहते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से बलराम जी आते हैं, बलराम से अनिरुद्ध, शंकरसेन, प्रद्युम्न, वसुदेव, इस प्रकार से नाना प्रकार के जो अवतार होते हैं, फिर महाविष्णु, नारायण, और फिर सारे जो अवतार होते हैं नरसिंह भगवान, वामन भगवान, इस तरह कितने सारे अवतार हैं। इनके सब अलग अलग मूर्तियां बन सकती हैं, अलग अलग मूर्तियां हैं, अलग अलग रूप हैं, पर फिर भी सब साक्षात भगवान ही है। हो सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी अलग अलग लीला में, अलग अलग भाव में प्रकट होते हैं। जैसे आप देखेंगे द्वारकाधीश कृष्ण अलग हैं, मथुरा कृष्ण अलग हैं और वृंदावन कृष्ण अलग हैं, वैसे तो एक ही हैं, पर क्योंकि वो अलग भाव में हैं इसलिए वो अलग है। जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे उनका रूप, बाल कृष्ण अलग हैं, ऐश्वर्य रूप में भगवान अलग हैं, यौवन रूप में वो, नवयौवन रूप में वो अलग हैं। हाँ? हाँ? वो वैसे पत्थर के रूप में, वैसे तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की त्वचा, उनका वर्ण ऐसा है कि जैसे बरसात के मौसम में जो घने बादल होते हैं वैसे उनका त्वचा होती है। बलराम जी जो है वो जो बसंत ऋतु की जो ये होती है के बादल होते हैं सफेद, बिल्कुल वैसे उनका स्वरूप है, उनका त्वचा है। और कृष्ण उनका जो बरसात के मौसम के जो घने बादल होते हैं वैसे उनकी त्वचा होती है। इसमें एक छोटा सा एक चुटकुला, एक घटना, चुटकुला तो नहीं है, घटना है, आपको बता दूं। जगन्नाथपुरी मंदिर है जगन्नाथपुरी में, तो वहां सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश करने देते हैं। जिसने हिंदू परिवार में जन्म लिया है उसी को वो लोग प्रवेश करने देते हैं। और हम लोग तो जा सकते हैं क्योंकि हमारा जन्म तो भारतवर्ष में हुआ है, हमारा देह भी भारतीय देह है। पर जो भक्त हैं, जो विदेश के भक्त आते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, काफी आगे भी बढ़ चुके हैं, पर क्योंकि उनका जन्म बाहर हुआ है, एक हिंदू कुल में नहीं हुआ है, इसलिए ये लोग जो पंडा लोग हैं उनको अंदर नहीं जाने देते। इसका शास्त्रों का कोई आधार नहीं है। और वहां मूर्तियां जगन्नाथपुरी मंदिर में किसकी हैं? जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा। जगन्नाथ जी श्री कृष्ण हैं, बलभद्र यानी बलराम जी हैं, और सुभद्रा यानी उनकी बहन सुभद्रा। तो जब उन्होंने उनको, ये तो गोरे लोग हैं, इनको अंदर मत छोड़ो, ऐसे पंडा लोग बोल रहे थे, तो हम लोग ऐसे समझाने लगे कि देखो श्री कृष्ण तो हम जैसे हैं, वो काले हैं, पर बलराम जी तो गोरे हैं, तो आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि बलराम जी भी बिल्कुल गोरे स्वरूप के थे, गोरा त्वचा था उनका, बिल्कुल सफेद था, ऐसे ही इनका है, तो अब क्यों नहीं छोड़ रहे इनको? वो समझ नहीं आए, वो समझ नहीं पाए। तो इस प्रकार से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में शास्त्रों के बारे में, विग्रह के बारे में, कौन मंदिर में आ सकता है, नहीं आ सकता है, इस प्रकार के बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो अलग अलग त्वचा भी हो सकते हैं भगवान के, वैसे भाव से भी। एक प्रकार जब हम प्रभुपाद जी अफ्रीका में गए थे तो जब काले पत्थर से मूर्तियां श्री कृष्ण की बनाई जाती थी और वो प्रचार करते थे कि श्री कृष्ण का काला स्वरूप है, काला रंग है, तो वहां अफ्रीका में सुनकर लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि लोग उनको बहुत चिढ़ाते हैं सारे दुनिया में कि काला है काला है। तो वो जब देखा कि भगवान काले हैं तो बहुत खुश हो गए। तो जब श्री कृष्ण एक मूर्ति की, श्री कृष्ण की ऐसे काले रंग की मूर्ति की स्थापना वो करने जा रहे थे, तो उनके एक अफ्रीकन भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी हम तो बहुत खुश हो गए हैं कि ये देख करके अभी श्री कृष्ण काले हैं। तो वो कहने लगे कृष्ण काले तो हैं पर तुम्हारे जैसे काले नहीं है। उनका कालापन जो है वो आध्यात्मिक कालापन, वो ये भौतिक काला नहीं है, ये अति सुंदर है, ये ऐसा सुंदर है कि एक बार देखोगे तो उसकी आंखें इससे निकाल नहीं पाओगे। तो भगवान के भी इन्फिनिट वैरायटी होते हैं, और ये शास्त्रों के आधार से और जो महान भक्त हुए हैं इनके आधार से अगर किए जाते हैं तो वो बोनाफाइड यानी सच्चे माने जाते हैं। हाँ जी, अगर आत्मा सिर्फ, आपका सवाल यह है कि आत्मा अगर सिर्फ साक्षी है तो उसे दुरात्मा या दिव्यात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा की इच्छा के अनुसार सब कुछ चल रहा है, सारे सृष्टि इच्छा पे आधारित है। जैसे हमने इच्छा की थी वैसे हम भगवान के धाम में से गिर कर ये भौतिक दुनिया में आए हैं। इच्छा के अनुसार ये भौतिक प्रकृति काम कर लेती है, हमारा शरीर भौतिक तत्वों से बना हुआ है, और जैसे हमारी इच्छा है और हमारे कर्म और हमारी इच्छाओं के अनुसार भगवान ये भौतिक शक्ति के द्वारा हमारे शरीर को काम करवा लेता है। तो चाहे पाप काम हो या कोई बुरा अच्छा काम हो, पाप या पुण्य, वो कार्य के लिए हम जिम्मेदार इसलिए हैं कि वो हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। भले ही हम साक्षी हैं फिर भी क्योंकि हम इस प्रकार इच्छा करते हैं, हमारे स्वतंत्रता का सदुपयोग या दुरुपयोग करते हैं, इसलिए हमें उसका फल भी भुगतना पड़ता है। हाँ देखिए, आपने जो वाक्य बताया कि भगवान की इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, इसका मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि भगवान के अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसमें थोड़ा अंतर है। भगवान की इच्छा के अनुसार तो काम चलता है ही, पर जो जीव भगवान को छोड़कर चले जाता है और जो जीव पाप काम करता है, भगवान की इच्छा नहीं है कि वो बुरा आदमी बने, ये वो मुझसे दूर चला जाए, वो पाप करे, पर भगवान उस व्यक्ति को पाप करने के लिए अनुमति देते हैं, क्योंकि जीव का स्वतंत्र, जीव स्वतंत्र है, स्वतंत्र थोड़ा सा स्वतंत्रता जीव में रहता है, जिससे कि वो अच्छा काम भी कर सके और बुरा काम भी कर सके। और भगवान ने ये स्वतंत्रता जीव को क्यों दी है? ताकि वो जीव भगवान को अपने ही इच्छा से, स्वेच्छा से भगवान की भक्ति करे और प्रेम करे। जो प्रेम स्वेच्छा से आता है, वही इस प्रेम में रस रहता है। सही बात है ना? अगर किसी की स्वतंत्रता को आप छीन लो और जबरदस्ती उससे प्रेम निकाल लो उससे, तो वो प्रेम नहीं है। तो क्योंकि जीव के बीच में और भगवान के बीच में रिश्ता प्रेम का है, भक्ति का है, इसलिए भगवान जीव के स्वतंत्रता में कभी भी इंटरफियर नहीं करते। और जब आप किसी जीव को स्वतंत्रता देते हैं, उसे अच्छे काम करने का आप उसको चॉइस देते हैं, तो उसे बुरे काम करने का भी चॉइस देना चाहिए, नहीं तो फिर स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए अगर जीव को कोई बुरा काम भी करना है, तो भगवान अनुमति देते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें करना ही है ये काम, तो कर लो, मैं तुम्हें सारे फैसिलिटीज दे दूंगा, लेकिन इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अच्छे कर्मों का अच्छे फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। पर ये अच्छे बुरे के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा या बुरा दोनों ये हमें जन्म मृत्यु चक्कर के चक्कर से हमें छुटकारा नहीं दिलाते। इसलिए हमें दिव्य काम करने चाहिए, भगवान से संबंधित जो कार्य है वो करने चाहिए, जिससे कि हम ये भौतिक स्तर में जो अच्छे बुरे का चक्कर है, इसके परे होकर हम ये भौतिक दुनिया के संसार। हरे कृष्ण।